नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में जल जीवन मिशन और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में शपथ लेने के बाद आज 508 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद किए गए। और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम का उद्घाटन किया गया। संध्या समाचार के साथ मैं संजय भंडारी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों, तटवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवाद की समस्या तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बारे में सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में आतंकवाद रोधी रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा से जुड़े प्रशासकों को एक मंच प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नैनीताल में जल जीवन मिशन और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश दिए। आज हल्द्वानी में आयोजित बैठक में श्री धामी ने योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर मानकों के अनुरूप समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने और गड्ढों को शीघ्र भरने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में नवनिर्मित फॉरेस्ट सिटी पार्क का निरीक्षण किया और पार्क परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पार्क का निर्माण हरियाली बढ़ाने, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में 508 अग्निवीर शपथ लेने के बाद आज सेना में शामिल हो गए हैं। इस दौरान KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि सेना में शामिल होकर युवाओं ने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया है।
कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल RC तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखें।
ब्रिगेडियर संजय यादव ने करीब 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 अग्निवीरों को उत्कृष्ट पदक देकर सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा है कि ई विधानसभा के माध्यम से विधानसभा सत्रों में कागजी कार्यवाही कम होगी, जिससे समय की बचत होने के साथ ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। श्रीमती भूषण ने आज देहरादून स्थित विधानसभा भवन में चल रहे नव निर्माण कार्यों और ई विधान एप्लीकेशन का अवलोकन करते हुए ये बात कही। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। विधानसभा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से सूर्या ड्रोन शो 2024 आगामी 20 और 21 दिसंबर को देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय ड्रोन उद्योग के लिए अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा और एयरोस्पेस के उप निदेशक सोमेंदर गौतम ने बताया कि ड्रोन शो का मुख्य उद्देश्य भारत को ड्रोन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना और उसे वैश्विक स्तर पर तकनीकी स्वायत्तता की ओर प्रेरित करना है। रुद्रप्रयाग जिले में पेंशन योजना से वंचित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों के जरूरी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे ताकि पात्र लाभार्थियों को पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार ने बताया कि लोगों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही गौमुख, गर्तांगली, नीलांग व केदारताल ट्रैक के चारों गेटों को शीतकाल के लिए बंद किया गया है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 31,508 पर्यटकों ने पार्क का भ्रमण किया। इससे पार्क प्रशासन को 7,80,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पार्क के वन प्रभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह बिष्ट ने बताया कि शीतकाल में वन्य जीवों की निगरानी के लिए वनकर्मी नियमित रूप से गश्त करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि इस बार पार्क को अच्छा राजस्व भी प्राप्त हुआ।
पिछले वर्ष की तुलना में हमारा यह वर्ष उत्कृष्ट रहा। हमको लगभग 76 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उसके अलावा जो टूरिज्म के कारण स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिला, उनको जो प्राप्ति हुई वो अलग है। यह तो जो धन हमें मिला वो केवल एक मात्रात्मक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो पिछले 3 सालों में उत्तरोत्तर हमारे पर्यटकों में वृद्धि हुई है और हमारा जो पार्क है उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है। लोग इधर आकृष्ट हो रहे हैं।
रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस राष्ट्रव्यापी पहल को भारत के युवाओं के बीच अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्थान के उप निदेशक प्रोफेसर UP सिंह ने कहा कि युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के वास्तविक सार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों के युवाओं को जोड़ने से सहयोग, नवाचार और हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि की गहरी समझ विकसित होती है।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये युवा संगम को किया और इसका मेन पर्पज ये है कि डिफरेंट स्टेट के जो बच्चे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा करके वहाँ के कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को समझें और वहाँ के लोगों से कनेक्ट करें एक दूसरे को। तो एक स्टेट की परंपरा को, कल्चर को समझना, वहाँ की चीज़ों को समझना जो है इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है।
पिथौरागढ़ के जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा ऋषिका रावत ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र में बीते 26 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2024 में ऋषिका ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल एंड कंसर्न विषय पर प्रतिभाग किया। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय और एप्सिलॉन क्रिएटिव एजेंसी गुरुग्राम ने 3D तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों संस्थान मिलकर अत्याधुनिक तकनीकी अनुसंधान और विकास कार्यों पर काम करेंगे, जिससे डिजिटल तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। और अब संक्षिप्त समाचार। नैनीताल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से प्रत्येक मंगलवार को चलने वाली काठगोदाम जम्मू तवी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कोहरे के कारण कल से 28 फरवरी तक निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा रविवार को काठगोदाम आने वाली जम्मू तवी काठगोदाम एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी। सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़ी बैठक में विगत यात्रा अनुभव और यात्रा काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू करने पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में जल जीवन मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में शपथ लेने के बाद आज 508 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद किए गए और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।